द्वितीय अंक प्रथम दृश्य मालव में शिप्रा तट पर कुंज में देवसेना इसी पृथ्वी पर है और अवश्य है। विजया कहाँ राजकुमारी, संसार में छल प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है, कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी नोच खसोट मुंह में से आधी रोटी छीनकर भागने वाले विकट जीव यही तो हैं। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों की पतिता दशा है। देवसेना पवित्रता ही माप पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं, वे कुसुम कोमल हैं कि वज्र कठोर कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिला की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं, उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। विजया होंगे परंतु मैंने नहीं देखा। देवसेना तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा? विजया नहीं तो। देवसेना समझ कर कहो। विजया हाँ समझ लिया। देवसेना क्या तुम्हारा हृदय कभी पराजित नहीं हुआ? विजया विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ? यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीर बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है, और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। विजया तो राजकुमारी मैं कह दूं? देवसेना हाँ हाँ तुम्हें कहना ही होगा। विजया मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना नहीं विजया, वह टालने से बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो, देखो यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे सामने देखकर। अरे लो वह युवराज आ रहे हैं, हम लोग हट चलें। दोनों जाती हैं। स्कंदगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालित। स्कंदगुप्त विजया का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या यही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है? चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्रपालित युवराज संपूर्ण संसार क्रमण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वालंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के उर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्थ विगत ज्वरह का शंखनाद सुना करता है। स्कंदगुप्त चक्र ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद शशि का विलास हो तब भी दांत पर दांत रखे मुट्ठियों को बांधे लाल आँखों से एक दूसरे को पूरा करे। वसंत के मनोहर प्रभात में निभृत कांत कांतारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गरम रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं चक्र मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं है, कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूँ। चक्रपालित सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं, वह तुक्ष प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका शुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आपने कब का समय निश्चित किया है? राज सिंहासन कब तक सुना रहेगा? पुष्यमित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंदगुप्त, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। चक्रपालित, हाँ युवराज, मुझे यह अधिकार है। स्कंदगुप्त, नहीं चक्र, अश्वमेघ पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमारगुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। मुझे सिंहासन न चाहिए, पुरगुप्त को रहने दो, मेरा अकेला जीवन है। मुझे चक्रपालित, यह नहीं होगा। यदि राजशक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा, तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश। विजया, यह क्या राजकुमारी, युवराज तो उदासीन है। देवसेना, हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है। विजया, दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है। देवसेना, कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो नहीं हट रहा? क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा? विजया, राजकुमारी तुम तो निर्दयी वाग बाणों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना, नहीं विजया, बात ऐसी नहीं है। धनवानों के हाथ में माप ही एक है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या, हृदय भी उसी से मापते हैं। यह माप है उनका ऐश्वर्य। विजया, परंतु राजकुमारी इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है? अवश्य है, वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है। देवसेना, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है, उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई, तुमको लेना है, तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनोगी? महाराज, विजया, महारानी खोजती होंगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, क्या? देवसेना, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। पुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विह्वलता का अभिनय उसके मुख पर रहे, जिससे उस कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को लेने के लिए व्याकुल हो जाए, और फिर दो बुंद गरम गरम आंसू, और इसके बाद एक तान वागीश्वरी की करुण कोमल तान, बिना इसके सब रंग फीका। विजया, उस समय भी गान? देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं। विश्व के प्रत्येक कंप में एक तान है। आहा, तुमने सुना नहीं, दुर्भाग्य तुम्हारा, सुनोगी? विजया, राजकुमारी गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को जोर से हिला देना, जैसा उस तान से शून्य में हिलोर उठ गई। देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो, जहां देखो, बेताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनके चहचह कल कल छल छल में काकली में रागनी है। विजया, राजकुमारी क्या कह रही हो? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रभात में फूल हुआ, फूलों से लदा हुआ पराजित वृक्ष देखा है? विजया, नहीं तो? देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता, वह अकेले अपने सौरभ की तान से दक्षिण पवन में कंप उत्पन्न करता है, कलियों को चटकाकर, ताली बजाकर, झूम झूम कर नाचता है, अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है, उसके अंतर में जीवन शक्ति वीणा बजाती है, वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। घने प्रेम तरु तले बैठ छा लोभव आतप से तापित और जले, छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कुल, सींची आंसुओं से मृदुल है परागमय धूल, यह कौन जो छले, फूल चू पड़े बात से भरे हृदय का घाव, मन की कथा व्यथा भरी बैठो सुनते जाओ, कहाँ जा रहे चले, पीलो छवि रस माधुरी, सींचो जीवन बेर, जीलो सुख से आयु भर यह माया का खेल, मिलो स्नेह से गले घने प्रेम तरु तले। बंधु वर्मा का प्रवेश। देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया। बंधु वर्मा, देवसेना तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक न एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा, पगली जा देख, युवराज जा रहे हैं, कुसुमपुर से कोई समाचार आया है। देवसेना, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा, भाभी बुलाती हैं क्या? बंधु वर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी, संभवतः सिंहासन पर बैठने का, राज्याभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम? बंधु वर्मा, नहीं तो, मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु भौहों के नीचे एक गहरी छाया है, बात कुछ समझ में नहीं आती। देवसेना, भैया तुम लोग के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है, जी खोल कर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है, तब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से टाल देते हो, यह बड़ी प्रवंचना है। बंधु वर्मा हंसकर, अच्छा जा उधर, उपदेश मत दे। विजया और देवसेना जाती हैं। बंधु वर्मा, उदार वीर हृदय देवोपम सौंदर्य, इस आर्यव्रत का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है, अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है, भीषण भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखूं कौन विजयी होता है, परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए सर्वस्व अर्पित है। चलूं, जाता है दृश्यांतर। द्वितीय दृश्य। मठ में प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और सर्वनाग। प्रपंच बुद्धि, बाहर देख लो कोई है तो नहीं, सर्व जाकर लौट आता है। सर्वनाग, कोई नहीं, परंतु आप इतना चौंकते क्यों हैं? मैं तो कभी यह चिंता नहीं करता कि कौन आया है या कौन आवेगा। प्रपंच बुद्धि, तुम नहीं जानते सर्वनाग, नहीं सर्व श्रमण, खड़ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य की मैं प्रतीक्षा करता हूँ, जो कुछ लोग वही निपटा लेगा। सर्वनाग, नहीं श्रमण, खड़ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य की मैं प्रतीक्षा करता हूँ, जो कुछ होगा वही निपटा लेगा, इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं, विश्वास करना और देना इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रपंच बुद्धि प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। अच्छी बात है कहिए, सर्वनाथ कहता है, अच्छी बात है कहिए। भट्टार्क पहले तुम चुप तो रहो, सर्व चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच बुद्धि धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। सर्वनाथ भिक्षु शिरोमणि वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है। प्रपंच बुद्धि यही हत्या रोकना अहिंसा गौतम का धर्म है। यज्ञ की बलियों को रोकना करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं वह तो तुम्हें करना ही होगा। भट्टार्क क्या? प्रपंच बुद्धि महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है, उन्हें संसार से हटाना होगा। सर्वनाग ठीक है, तभी आप चौंकते हैं और तभी धर्म की रक्षा होगी, हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे क्यों? भट्टार ठहरो सर्व, परंतु महास्थवीर क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच बुद्धि नितांत। सर्वनाथ बिना इसके काम नहीं चलेगा, धर्म नहीं प्रचारित होगा। प्रपंच बुद्धि और यह काम सर्व को करना होगा। सर्वनाथ चौंककर मुझे? मैं कदापि नहीं। भट्टार्क शीघ्र ताना करो सर्व, भविष्यत की सुखों से इसकी तुलना करो। सर्वनाग नाप तोल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखे भेड़ियों की भांति उसका रक्तपान कर लूंगा, चाहे मैं ही क्यों ना मारा जाऊं, परंतु निरीह हत्या यह मुझसे नहीं। भट्टार्क मेरी आज्ञा? सर्वनाग तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार, चल चलो, दो सहस्त्र शत्रुओं पर हम दो मनुष्य आक्रमण करें, देखें मरने से कौन भागता है। कायरता अबला महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो? भट्टार्क सावधान सर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो या मरो, मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता, मुझे कुछ है, वह जिसे मिलेगा लूंगा, साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे। सर्वनाग नहीं भट्टार, लाभ के लिए ही मनुष्य सब काम करता है, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था, मुझसे यह नहीं होने का। प्रपंच बुद्धि ठहरो भट्टार, मुझे पूछने दो, क्या क्यों सर्व, तुमने जो यह अस्वीकार किया है वह क्यों, पाप समझकर? सर्वनाग अवश्य। प्रपंच बुद्धि तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है, संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इससे पराजित होकर शस्त्र अर्पण कर जीने से क्या लाभ। तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। सर्वनाग हाँ। प्रपंच बुद्धि मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना? सर्वनाग हाँ ऐसा ही तो। प्रपंच बुद्धि तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। सर्वनाग दूसरा उपाय क्या? प्रपंच बुद्धि है क्यों नहीं, हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं, और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जांच का होगा। सर्वनाग परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख न सके, उसके बल पर तुम कैसे पूर्व कर्म कर सकते हो? प्रपंच बुद्धि आशा पर, जो सृष्टि का रहस्य है, आओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दें। मदिरा का पात्र भरता है प्रपंच बुद्धि, स्वयं पीकर सबको पिलाता है और बार बार ऐसा करता है। प्रपंच बुद्धि क्यों, कैसी कड़वी थी। शर्वनाक हूँ, हृदय तक लकीर खिंच गई। भट्टार्क परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा है। शर्वनाक मैं नाचूं, उठना चाहता है। प्रपंच बुद्धि ठहरो मेरे साथ। उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ा कर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है, चोट लगती है। भट्टार्क अरे रे रे, संभाल कर उठाता है। प्रपंच बुद्धि कुछ चिंता नहीं। सर्वनाक बड़ी चोट आई। प्रपंच बुद्धि परंतु परिणाम अच्छा हुआ, तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी। भट्टार्क वह टल गई क्या, आश्चर्य से देखता है। शर्वनाक क्यों सेनापति, टल गई। प्रपंच बुद्धि उसी विपत्ति का निवारण करने के लिए मैंने यह कष्ट सहा। मैं तुम लोगों के भूत भविष्यत और वर्तमान का नियामक रक्षक और दृष्टा हूँ। आओ अब तुम लोग निर्भय हो। भट्टार्क धन्य गुरुदेव। शर्वनाग आश्चर्य। भट्टार्क शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। शर्व अब भी तुम विश्वास नहीं करते। शर्वनाग करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। पर प्रपंच बुद्धि अच्छी बात है, चलो सब जाते हैं। कुमारदास रूपी धातुसेन का प्रवेश। धातुसेन मैं अभी यहीं रह गया, सिंघल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुद्गल तो अभी नहीं आया, यहाँ तो आने को था। देखता है लो वह आ गया। मुद्गल क्यों भैया, तुम ही धातुसेन हो। धातुसेन हंसकर पहचानते नहीं। मुद्गल किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है, तुम किसी धातु के हो। धातुसेन भाई सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। मुद्गल तब तुम लोहे के हो। धातुसेन लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। हूँ भाई मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो, परंतु यह तो बताओ महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा। मुद्गल मुक्ति का उपाय, अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दिवाले की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो शतरानी है, संभवतः उनको मुक्ति शस्त्र से होगी। धातुसेन तुमने ठीक सोचा, आज अर्धरात्रि में कारागार में। मुद्गल कुछ चिंता नहीं, चलो युवराज आ गए हैं। धातुसेन मैं भी प्रस्तुत रहूंगा। दोनों का प्रस्थान। दृश्यांतर तृतीय दृश्य। देवकी के राज मंदिर के बाहरी भाग में मंदिरोन्मत्त शर्वनाग का प्रवेश। शर्वनाग कादम्ब कामिनी कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा, इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन क वर्गों की चाट नहीं तो कर्म क्यों करें। कर्म में एक कु और जोड़ दें। लो अच्छी वन मैत्री हो गई, लड़खड़ाते हुए कादम, ओह प्यास, प्याले में मदीरा उड़ेलता है, लाल यह क्या रक्त, आह कैसी भीषणता, कमनीयता है, लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है, किसका, एक प्राणी का, जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो, अरे रे रे नहीं, दुर्बल नारी, उह यह तेरी दुर्बलता है, चल अपना काम देख, देख सामने सोने का संसार खड़ा है। रामा का प्रवेश। रामा, पामर सोने की लंका राख हो गई, शर्वनाग उसमें मदिरा ना रही होगी सुंदरी, शर्वनाग, रामा मदिरा का समुद्र उफन रहा था, मदिरा समुद्र के तट पर ही तो लंका बसी थी, शर्वनाग तब उसमें तुम जैसी कोई कामनी ना होगी, तुम कौन हो, स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल, रामा स्त्री को देखते ही ढिलमिल हुए आँखें फाड़ कर देखते हो, जैसे खा जाएंगे, मैं कोई हूँ, सर्वनाग सुंदरी यह तुम्हारा ही दोष है, तुम लोगों का वेश विन्यास, आँखों की लुक्का चोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कोतूहल, पुकार कर टोक कर कहते हैं हमें देखो, हम क्या करें, देखते ही बनता है, रामा दुर्वृत्त मद्यप, तू अपनी स्त्री को नहीं पहचानता, पर स्त्री समझकर उसे छेड़ता है, सर्वनाग संभल कर, आए अरे ओह मेरी रामा तुम हो, रामा हाँ मैं हूँ, सर्वनाग हंसकर, तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला, नहीं भला मैं किसी पर स्त्री से, जीव निकाल कर कान पकड़ता है, रामा अच्छा यह तो बताओ कादम पीना कहाँ से सीखा है और यह क्या बत्ते थे, शर्वनाग हंसकर, तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला, नहीं भला मैं किसी पर स्त्री से, रामा अच्छा यह तो बताओ कादम पीना कहाँ से सीखा है और यह क्या बत्ते थे, शर्वनाग अरे प्रिय तुमसे न कहूँगा तो किससे कहूँगा, सुनो, रामा हाँ हाँ कहो, शर्वनाग निकट जाकर तुमको रानी बनाऊंगा, रामा चौंक कर क्या, शर्वनाग और निकट जाकर तुम्हें सोने से लाद दूंगा, रामा किस तरह, शर्वनाग वह भी बतला दूं, तुम नित्य कहती आई हो कि तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ, रामा अरे कहो भी, वह शर्वनाग वह पीछे बताऊंगा, आज तुम महादेवी के बंदी गृह में न जाना, समझ ही ना, रामा उत्सुकता से क्यों, शर्वनाग सोना लेना हो मान लेना हो तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज वहां जो कांड होगा तुम उसे देख ना सकोगे, तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ, रामा डरती हुई क्यों क्या करोगे, तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो, तुम क्या करोगे बोलो, शर्वनाग मद्यपान करता हुआ, हत्या, थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा, ओह मेरा नशा उखड़ा जा रहा है, रामा आज तुम्हें क्या हो गया है, मेरे स्वामी, मेरे, शर्वनाग अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, सोना मिलने से सब हो जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ, इधर उधर देखकर बगल से सुराही निकाल कर पीता है, रामा ओह मैं समझ गई, तूने बेच दिया, पिशाच के हाथ तूने अपने को बेच दिया, अहा ऐसा सुंदर ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी के मोल बेच दिया, लोभवश मनुष्य से पशु हो गया है, रक्त पिपासु क्रूर कर्मा मनुष्य कृतघ्नता की कीच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उनके प्रतिकूल आचरण, वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा। शर्वणा, क्या तू तू? रामा, हाँ हाँ, मैं न होने दूंगी। मुझे हिमालय हत्यारे, मद्यप तेरी रक्त पिपाशा शांत हो जाए, परंतु महादेवी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर, कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेटकर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरी भला है। शर्वनाग, अच्छा तू इसमें विघ्न डालेगी? तू क्या विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा, मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा? रामा, मैं दूंगी, सोना मैं नहीं चाहती, मान में नहीं चाहती, मुझे अपने स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पकड़ती है। स्वामी, हिंस पशु भी जिनसे पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। सर्वनाग ठुकरा देता है, जा तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर दो हत्याएं करनी पड़ेंगी। मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका हूँ। रामा, तुम्हारा यह झूठा सत्य है, ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी, मान जाओ। शर्वनाग, ओह विलंब होता है तो पहले तू ही ले, पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और भट्टार का प्रवेश। भट्टार, शर्वनाग जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था परंतु वह भागी। अनंत देवी, सौगंध है यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा दिया जाएगा। प्रपंच बुद्धि, शर्व तुम तो स्त्री नहीं हो। सर्वनाथ, नहीं मैं प्रतिश्रुत हूँ, परंतु। भट्टार, तुम्हारी पद वृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यह प्रस्तुत है, दिखाता है काम हो जाने पर। शर्वनाग, तब शीघ्र चलिए, दुष्टा रामा भीतर पहुंच गई होगी। सब जाते हैं। दृश्यांतर चतुर्थ। बंदी गृह में देवकी और रामा। रामा, महादेवी मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ, मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार दे रहे हैं मेरे स्वामी। देवकी, शांत हो रामा, बुरे दिन कहते किसे हैं, जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण सहानुभूति सत्य पथ का अवलंबन करें, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर रामा, महादेवी परंतु आप ही की क्या दशा होगी? देवकी, मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस पर विपद भंजन की असीम दया अपना स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा, परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है। और देवकी, न घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेतों और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि के एक बिंदु से शांत होती हैं। नेपथ्य में संगीत, पालन पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के धन चेहरे दया दुलाल करे, पल भर भी विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का केतर फहरे। भट्टार, शर्वनाग के साथ अनंत देवी का प्रवेश। अनंत देवी, परंतु व्यंग्य की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती। देवकी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी, क्या तुम मेरा हत्या करोगे? प्रपंच बुद्धि प्रवेश करके, हाँ सद्धर्म, सधर्म का विरोधी हिमालय की निर्जन ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नहीं बचने पावेगा, और उस महाबलिदान का आरंभ तुम ही से होगा। शर्व आगे बढ़ो। रामा, एक शर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच भी यदि जुटकर आवे तो भी आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा। सर्वनाथ, मैं तेरा स्वामी हूँ। रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी? रामा, ओह बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच को, और यह महादेवी तेरी कौन है? शर्वनाग, फिर भी मैं तेरा। रामा, स्वामी नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी का नरकवासी प्रेत है, तेरी हत्या कैसी, तू तो कभी का मर चुका है। देवकी, शांत हो रामा, देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती, चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। शर्व आगे बढ़ता है। अनंत देवी, क्यों देवकी, राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई? देवकी, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त के से कलुषित सिंहासन पर ना बैठ सकी। भट्टार, भगवान का स्मरण कर लो। देवकी, मेरे अंतर की करुणा कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से, हत्यारों से मैं उनके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विशंभर के श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का अभेद कवच पहना कर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। शर्वनाग, अच्छा तो, खड़ग उठाता है। रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हट जा अभागिनी। रामा, मूर्ख अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, यह वह या मैं? शर्वनाग, कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न ठुकराने दे। रामा, टुकड़े का लोभी, तू सती का अपमान करे, तेरी यह स्पर्धा, तू कीड़ों से भी तुक्ष है, पहले मैं मरूंगी तब महादेवी। अनंत देवी क्रोध से, तो पहले इसी का अंत करो शर्व, शीघ्रता करो। शर्वनाग, अच्छा तो वही होगा, प्रहार करने पर उद्यत होता है। सहसा किवार तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है, पीछे मुद्गल और धातु सेन आते हैं, शर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेते हैं। स्कंद गुप्त भट्टाग से, क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भट्टाग, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंद गुप्त, तू वीर है? अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाले चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? तो द्वंद युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने को। भट्टार दो एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंदगुप्त, मेरी सौतेली माँ तुम? स्कंदगुप्त, अनंत देवी, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारी पिता की पत्नी हूँ, घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई। स्कंदगुप्त, अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो, जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। देवकी के चरणों पर झुकता हुआ, अह हा मेरी माँ, देवकी आलंगन करते, आओ मेरे वत्स। दृश्यांतर पंचम दृश्य। अवंती दुर्ग का एक भाग, बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला का प्रवेश। बंधु वर्मा, वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम वर्मा, तात आपकी इच्छा, मैं तो आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है, उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्या मालव के बिना काम न चलेगा? बंधु वर्मा, देवी केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है, यह ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्कारण विपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था, मलेच्छों को सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंब निशेष था, तब उन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यह राज्य अब न्याय से उन्हीं का है। भीम वर्मा, परंतु क्या वे मांगते हैं? बंधु वर्मा, नहीं भीम, युवराज स्कंद ऐसे शूद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है, वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। जयमाला, परंतु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है। बंधु वर्मा, देवी तुम नहीं देखती हो कि आर्यव्रत पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घिर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है, इसलिए यह मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहे। इसी में सबका कल्याण है। आर्यव्रत का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्य अभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला, आर्यपुत्र अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पत्तल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधु वर्मा सिर झुकाकर सोचते हुए, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कर्तव्य प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। जयमाला, यदि होता? बंधु वर्मा, तब मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर से ही नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहना क्षत्रिय जो केवल खड़क का अवलंबन रखने वाले सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया है। भीम वर्मा, भैया तब? बंधु वर्मा, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्तित्राण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुस्कुरा कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। देवसेना का सहसा प्रवेश। देवसेना, भाभी, सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्ववाद का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। शुद्र स्वार्थ, भाभी जाने दो, भैया को देखो कैसा उदार, कैसा महान और कितना पवित्र। जयमाला, देवसेना समष्टि में भी व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो? बंधु वर्मा, ठहरो। जयमाला, इसी शुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है, इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं, इसे छोड़ दो। जयमाला, इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर हो जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा ही खोया, आपा नहीं खोया। भीम वर्मा, भाभी अब तर्क न करो, समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं उसके शुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी, हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो हमारा आर्यव्रत विपन्न है, यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा कर सके। जयमाला, जब सभी लोगों की यही इच्छा है तब मुझे क्या? बंधु वर्मा, तब मालेश्वरी की जय हो, तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा, तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है, तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो, वह जाना चाहता है। भीम वर्मा, ठहरो भैया, अभी हम भी चलते हैं। चक्रपालित प्रवेश करके, धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में धन में, विपत्ति में, आनंद में हम सभी महाभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा शूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधु वर्मा, स्वागत चक्र मालेश्वरी की जय हो। अब हम सब सैनिक जाते हैं। चक्रपाली, ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों का निर्मूल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु वर्मा, संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापथ के सीमा की रक्षा करेंगे। चक्रपाली, हाँ बंधु। देवसेना, चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूँगी। जयमाला घुटने टेक कर, मालेश्वर की जय हो। प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गई, आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है मेरे स्वामी, और ऐसे महान धन्य हूँ मैं। बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है। दृश्यांतर षष्ठ सर्ग। षष्ठ दृश्य, पथ में भट्टार्क और उसकी माता। कमला, तू मेरा पुत्र है कि नहीं? भट्टार्क, माँ संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है, और मुझे इतने पर ही विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई, मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टार्क, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, मल्लेच्छों से पद दलित भरत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा, परंतु हाय। भट्टार्क, माँ तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल किया। क्या मेरी खड़ग लता आग के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रणनाद वज्र ध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं कपा देते? क्या तेरे भट्टार का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते? कमला, मानते हैं, इसी से तो और ग्लानी है। भट्टार, घर लौट चलो माँ। ग्लानी क्यों है? कमला, इसलिए कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया, और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतघ्न, कमला कलंकनी हो सकती है, परंतु यह नीचता कृतघ्नता उसकी रक्त में नहीं। रोती है। विजया का प्रवेश। विजया, माता तुम क्यों रो रही हो? भट्टार्क की ओर देखकर, और यह कौन? क्यों जी, तुमने इस विद्या का क्यों अपमान किया है? कमला, देवी यह मेरा पुत्र था। विजया, था क्या अब नहीं? कमला, नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने के लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए, अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया, कौन? तुम महाबलाधिकृत भट्टार्क हो, और तुम्हारी माता की यह दीन दशा? कमला, ना बेटी, उसे कुछ मत कहो, मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण कर इसी उज्जैनी में पड़ी रहूंगी, परंतु इससे। भट्टार्क, माँ अब और लज्जित ना करो, चलो घर चलो। विजया स्वागत, आह कैसी विरत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है, और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। कमला, इस पिशाच ने छलने के लिए रूप बदला है, सम्राट का अभिषेक होने वाला है, या उसी में कोई प्रपंच रचने आया है, मेरी कोई न सुनेगा। नहीं तो मैं स्वयं इसे दंड नायक को समर्पित कर देती। सहसा मातृगुप्त मुद्गल और गोविंद गुप्त का प्रवेश। मुद्गल, कौन? भट्टार्क। मातृगुप्त, अरे यहाँ भी? भट्टार्क तलवार निकालता है, गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं। मुद्गल, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। गोविंद गुप्त, कृतघ्न, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार न करती हो, केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। तू उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठा कर नहीं रह सकता? मातृगुप्त, बंदी करो इसे। कमला की ओर घूमकर, और तुम कौन हो भद्रे? कमला, मैं इस कृतघ्न की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं यही विचार करती थी। गोविंद गुप्त, यह तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियां जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। विजय को इंगित कर, और यह युवती कौन है? कमला मुझे सहायता देती थी, कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। मुद्गल, अरे राम, यह भी कोई अवश्य भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे बंदी करो। बट्टार, यह क्यों, इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका कोई अपराध नहीं है। विजया, स्वागत, ओह इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है, मैं मालव में अब किस काम की हूँ। जिसके भाई ने समस्त राज्य को अर्पण कर दिया है वह देवसेना, और कहाँ मैं, तब तो मेरी यही भट्टार की ओर देखती है। गोविंद गुप्त, भद्रे तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? विजया, यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, वत्से तुम आकारण क्यों दुख उठाती हो? विजया, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधीश न्यायकरण में दूंगी, यहाँ मैं कुछ न कहूँगी। मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंद बुक, भट्टार्क यदि तुम्हें कुछ कहते। भट्टार्क, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, मुझे भी विलंब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल, और वृद्धा कमला? गोविंद गुप्त, यह बंदी नहीं है, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष उसे चलना होगा। मातृगुप्त, तो फिर सब चले, अभिषेक का समय भी समीप है, सब जाते हैं। सप्तम दृश्य, राजसभा। बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुद्गल के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त बीच में खड़ा होकर, तात कहाँ थे, इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चरण वंदन करता है गोविंद गुप्त। उठो वत्स, आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति गुप्त कुल तिलक भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं, तुम मेरे आत्मा हो। वत्स आलिंगन करता है। अनुचारियों के साथ देवकी का प्रवेश। स्कंद देवकी के चरण वंदन करता है। देवकी, वत्स चिर विजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो, महाराज पुत्र इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह चिन्हशील रहे। गोविंद गुप्त, महादेवी तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोमंडित रहेगा। स्कंद गुप्त, बंधु वर्मा से मित्र मालवेश बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें। जयमाला और देवसेना का प्रवेश। जयमाला, देव यह सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं, आर्यव्रत के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तुमुल ध्वनि, जत मालव। बंधुवर्मा हंसकर, सम्राट अब तो मालेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलंब न कीजिए। गोविंद गुप्त, वत्स इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं, इनका स्वार्थ त्याग दधीची के दान से कम नहीं, बढ़ो वत्स सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। स्कंद गुप्त, तात विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है, ऐसे समय में केवल एक सैनी बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं, आर्य कन्याएं अपहरण की जाती हैं, हुणों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है, कहीं देवता की पूजा नहीं होती, सीमा के बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है, ऐसे समय आर्य जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युग में सेनानी बनने के लिए। सम्राट, गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बिठाते हैं। भीम वर्मा छत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमर करती है। गरुड़ ध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़े होते हैं। देवकी राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़क का उपहार देते हैं। चक्रपालित गरुड़ प्रांकित राज दंड देता है। गोविंद गुप्त परम भट्टारक महाजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो। सब संवेद स्वर से जय हो कहते हैं। जय हो। बंधु वर्मा आर्य साम्राज्य के महाबलाधिकृत महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब वैसा ही कहते हैं। स्कंदगुप्त आर्य इस गुरु भार उत्तरदायित्व का सत्य के साथ पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से स्वदेश सेवा से कभी विचलित ना हो। गोविंद गुप्त सम्राट परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद गुप्त ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधु वर्मा तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्म त्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्जवल करेगी। वीर इस वृद्ध में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधु वर्मा अभी नहीं आर्य, आपके चरणों में बैठकर यह बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का राजकुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य का घोष होता है। स्कंदगुप्त तात पंडित इस समय नहीं है। चक्रपाली समय सम्राट वह सौराष्ट्र के चंचल राष्ट्रनीति की देखरेख में लगे हैं। कुमारदास रूपी धातु सेन का प्रवेश। मातृगुप्त सिंघल के युवराज कुमार धातु सेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखते हैं। स्कंदगुप्त कुमारदास सिंघल के युवराज धातु सेन। मातृगुप्त हाँ महाराज धराज। स्कंदगुप्त अद्भुत वीर युवराज तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ, आओ स्वागत। सब मंचों पर बैठते हैं। गोविंद गुप्त बंदियों को ले आओ। सैनिकों के साथ भट्टार शर्वना विजया तथा कमला का प्रवेश। स्कंदगुप्त क्यों शर्व, तुम क्या चाहते हो। शर्वना सम्राट मुझे वध की आज्ञा दीजिए। मेरे जैसा नीच के लिए और कोई दंड नहीं है। स्कंदगुप्त नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा जो वध में भी उग्र होगा। शर्वनाग वही हो सम्राट, जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकल जाए उतना ही उत्तम होगा। परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम इसी यंत्रणा को भोगो, क्योंकि रामा साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा ना बनाऊंगा। सीता रामा तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा। रामा सम्राट के पैर पकड़ती है। शर्वनाग दुहाई सम्राट की, मेरे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया था। ओह छुरी निकालना चाहता है। स्कंदगुप्त ठहरो सर्प, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। स्कंदगुप्त शर्व यहाँ आओ। शर्व समीप आता है। देवकी बस इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेजो जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सब महादेवी की जय हो। स्कंदगुप्त शर्व तुम आज से अंतर्वेद के विषय पति नियुक्त किए गए, यह लो। खड़क देता है। शर्वनाग रुद्ध कंठ से सम्राट देवता आपकी जय हो। देवकी के पैर पर गिरकर माँ मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगधात्री कि मैं देव चरणों में आत्म बलि देकर जीवन सफल करूं। देवकी, उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पार्श्व धर्म है, उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सर्व खड़ा होता है। स्कंदगुप्त, भट्टार्क, तुम गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियुक्त किए गए थे और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित थे, यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भट्टार्क, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी, क्यों भट्टार्क, तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो? क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हो? वे औरों को भी प्रवंचित नहीं कर रहे हो? भट्टार्क, अपराध हुआ, सिर नीचा कर लेता है। स्कंदगुप्त, तुम्हारे खड़ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा न रहे? यह बड़े धिक्कार की बात है, तुम्हारा इतना पतन। भट्टार्क स्तब्ध रहता है विजया की ओर देखकर। और तुम विजया, तुम क्यों इसमें? देवसेना, सम्राट, विजया मेरी सखी है। विजया, परंतु मैंने भट्टार्क को वरण किया है। जयमाला, विजया, विजया, कर चुकी देवी। देवसेना, उसके लिए दूसरा उपाय न था राजाधिराज, प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचा गिरा सकती है, परंतु विजया तूने शीघ्रता की। स्कंदगुप्त विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंदगुप्त कमला को इंगित कर, यह वृद्धा इसी कृतघ्न भट्टार्क की माता है, भट्टार्क के नीच कम से दुखी होकर यह उज्जैनी चली आई थी। स्कंदगुप्त, परंतु विजया तुमने यह क्या किया? देवसेना, स्वगत, आह, जिसकी मुझे आशंका थी वही है। विजया आस्तु हार कर भी जीत गई। देवकी, वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त न गिरे। तुम्हारी माता की यह मंगल कामना है कि तुम्हारी शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए यह क्षमा प्रार्थनी हूँ। धातु से, आर्य नारी, सती, तुम धन्य हो। इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा रहेगा। स्कंदगुप्त, जैसे माता की इच्छा। मातृगुप्त, परमेश्वर परम भट्टारक महाराज अधिराज श्री स्कंदगुप्त की जय। समवेत स्वर से जय घोष। यवनिका।